ओम शांति। सभी ने गीत सुना, ये हम सबके दिल के उद्गार है ना। साथ तुम्हारा प्रभु कितना प्यारा है। तो प्रभु का साथ हमें मिला है, केवल ये निश्चय ही नहीं है पर साथ साथ इसका नशा भी है। स्वयं भगवान हमारा बाप, टीचर, सतगुरु बनकर हमारी पालना भी कर रहे हैं, हमें पढ़ा भी रहे हैं और हमें पावन भी बना रहे हैं और घर भी ले जाएंगे, साथ ले जाएंगे। तो ये निश्चय और नशा अगर सदा रहे तो अवश्य निशाने पर पहुंचेंगे। कोई भी निशाने पर पहुंचने के लिए या निशाना लगाने के लिए पहले निश्चय चाहिए, फिर उसका नशा चढ़ाना होता है, तब निशाने पर तीर लगा सकते हैं या पहुंच सकते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को निश्चय दिलाते हैं, तुमको कौन मिला है? स्वयं भगवान मिला है। तो वो हमारे माता पिता बनकर हमारी पालना कर रहे हैं, ये निश्चय है ना। हमारी पालना कौन कर रहा है? कोई सोचे कि जो हमको धन देता है, घर में पति है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो पालना कर रहे हैं क्या? वो कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऐसे ही समझते थे जो भोजन खिलाते हैं वही पालना कर रहे हैं, हमारी देखभाल कर रहे हैं वही पालना कर रहे हैं। अब वो तो सब हिसाब किताब है कर्मों का, लेकिन अंतर में तो यही निश्चय है कि हमारी पालना तो स्वयं भगवान कर रहा है। फिर चाहे किसके द्वारा भी करे, किसके द्वारा तो करेगा ना। और जो पालना करे उनको भी ये निश्चय हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। चलो हम अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं, घर को देखते हैं, परिवार को संभालते हैं, तो क्या हम कर रहे हैं? कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है, भले हमारे द्वारा या दूसरे हमारी कर रहे हैं, पर बाबा कर रहा है उनके द्वारा। तो बीच में बाबा लाने से क्या होता है, एक तो मोह नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो अब मोह और अभिमान आता है, मेरा है, मैं कर रहा हूं, अभिमान आएगा, हाँ मेरा अधिकार है, मुझे करना है, तो थोड़ा उस पर हक लगेगा, मैंने इतना किया और इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने इतना किया तो मैंने किया तो मुझे उसका रिटर्न मिलना चाहिए, और इतना किया और इसने ये किया मेरे साथ तो उसका दुख भी होगा। लेकिन अगर बीच में बाबा को लाया तो बाबा कर रहा है, वही करा रहा है, मेरी पालना भी वही कर रहा है, या इनकी भी बाबा कर रहा है भले मेरे द्वारा। तो बीच में बाबा को लाने से न मोह आएगा, न अभिमान आएगा, न वो अधिकार की महसूसता होगी। नहीं तो अधिकार आता है, मैंने इतना किया, फिर रिटर्न की इच्छा होती है, मैंने इतना किया उसको मेरे लिए ऐसे इतना करना चाहिए, मैंने किया ना, मैंने कोई कम किया है क्या? इसने देखो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने कितना किया इनके लिए। लेकिन हम क्या अभी जानते हैं कि ये मैंने नहीं किया न उसने किया, ये सब क्या था, हिसाब किताब था। और अगर बीच में बाबा लाया तो न अभिमान आएगा, न मोह आएगा, न अधिकार आएगा और न हिसाब किताब और आगे बनेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं पाप का दरवाजा क्या है, मैं और मेरा। तो जब मैं और मेरा निकल गया तो पाप भी खत्म, तो हिसाब किताब भी खत्म, बोझ भी खत्म, सब हम खत्म करते जाएंगे और हल्के होते जाएंगे। और जितना मैं मेरा करेंगे उतना क्या है, भारी होते जाएंगे। तो हमको हल्का होना है या भारी होना है? घर जाना है तो हल्का होकर जाएंगे या भारी होकर जाएंगे? जा सकेंगे भारी होकर, हल्का होकर ही जा सकेंगे ना। इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, भले सब कुछ हम कर रहे हैं पर फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। कोई कहे तुमने क्या किया, ठीक है मैंने तो कुछ नहीं किया। कई बार दुख होता है ना, मैंने इतना किया और ये कहता है मैंने कुछ नहीं किया। वो एक चुटकुला सुनाते हैं कि एक बार पति ने अपने पत्नी को बहुत डांटा, सारा दिन तुम क्या करती रहती, कुछ नहीं करती हो, कुछ नहीं करती हो तुम, कुछ नहीं करती हो, सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती हो, कुछ नहीं करती हो। बिचारी वो कहे मैं इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, पति मेरा ऐसे कहता है। तो बड़ा दुख हुआ उसको। तो एक दिन उसने कहा ठीक है मैं आज कुछ नहीं करती मैं आज कुछ नहीं करती हूँ। तो बैठ गई, सारा दिन कुछ नहीं किया। तो पति आया घर में, कहा ये क्या हो गया, सारा घर ऐसे नर्क बना हुआ पड़ा है। तो कहा आपने तो कहा ना मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, अभी करो आप, करो आप मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, करो आप। तो तब उसको महसूस हुआ अरे ये तो इतना, यही तो मैं आता हूँ घर तो इतना साफ सुथरा होता है, इतना अच्छा होता है, तो और परंतु मैंने ऐसे कैसे कह दिया मैं ये तुम कुछ नहीं करती हो। तो उसको रियलाइज हाँ अभी करो तो पता चलेगा कितना मैं करती हूँ। परंतु अगर किसने मुझे ऐसे कहा भी तुम कुछ नहीं करती और मैं इतना करती हूँ, तो उसका दुख तो होगा ना, मैं इतना करती हूँ तो भी हमको ऐसे कहते हैं, परंतु दुख होना चाहिए, सच मैं तो कुछ किया ही नहीं। बाबा ने खेल खेल में कराया, मैंने क्या किया, तो कुछ नहीं किया, सचमुच कुछ नहीं किया। तो फिर हल्के रहेंगे तो फिर वो भी मददगार बन जाते हैं क्योंकि हम हल्के हैं। पर मैं ही करती हूँ, मुझे ही करना है क्या, हाँ मेरा ही सारा ये क्या। और देखते हैं पति देव तो बैठा है, मौज कर रहा है, टीवी देख रहा है, हाँ, और गप्पे मार रहा है, और मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, सारा दिन तो काम भी करेंगे और क्या होगा अंदर ही अंदर, हाँ, गुस्सा भी आता है, क्या ये तो देखो कुछ मदद ही नहीं करता, सारा दिन मैं ही करती रहती हूँ, और ऊपर से भी ताने भी सुनो तुम तो कुछ नहीं करती हो। एक तो चलो भाई कर रहे हैं तो खुश हो, पर दूसरी ओर ऊपर से ताने भी कुछ नहीं करती हो। लेकिन अगर अंतर में ये धारणा है कि मैं थोड़ी कुछ करती हूँ, बाबा करा रहा है, बाबा कर रहा है, हाथ भले इस मेरे है लेकिन शक्ति तो बाबा की है, तो अगर ये बुद्धि में होगा तो क्या होगा, खुशी खुशी करेंगे, दुखी होके नहीं करेंगे। मैं करती हूँ, मैं करती तो दुखी होके भी कर सकते, लेकिन मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, तो इसलिए हल्के भी रहेंगे और सचमुच मन भी भारी नहीं रहेगा और खुशी से करेंगे, तो अंतर में कोई प्रकार का तनाव भी नहीं बना रहेगा। है तो सारी मन की बात ना, अपने अंतर की बात है, स्थिति की बात है, कार्य वही है, लेकिन कोई खुशी से करे, कोई दुखी होके करे, कैसे भी करे, सोच की बात है। वो बताते हैं, कहानी बताते हैं कि तीन व्यक्ति थे, तीन मजदूर थे, और एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो तीनों ही पत्थर तोड़ रहे थे हाथ से, नहीं पत्थर तोड़ते हैं, मशीन नहीं होगी तो हाथ से तोड़ रहे थे, छोटे छोटे पत्थर बनाने थे तो तोड़ रहे थे। तो एक व्यक्ति आया, एक से पूछा क्या कर रहे हो, देख रहा है पत्थर तोड़ रहे, फिर भी पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो कहा कि साहब बस नसीब फोड़ रहा हूँ, नसीब फोड़ रहा हूँ, क्योंकि जैसे एक एक पत्थर तोड़ रहा है जैसे लगता है नसीब को फोड़ रहा हूँ। पत्थर को क्या तोड़ रहा हूँ? नसीब को फोड़ रहा हूँ। तो दुखी होकर के नसीब फोड़ रहा था। ये तो थोड़ा भाई आगे आओ, ये देखो लाइन टेढ़ी हो गई, इस आगे आओ और चौथी लाइन बनाओ बहनों की। देखो ऐसे नहीं बैठो, चौथी लाइन बनाओ बहनों की, बहनी तरह सीधी हो जाओ। हाँ सीधी हो जाओ, आगे आ जाओ, चौथी लाइन रहा थोड़ा पीछे, थोड़ा साइड में जाओ, जगह नहीं छोड़ो। हाँ चौथी लाइन आगे बनाओ। तो एक ने कहा मैं अपना नसीब फोड़ रहा हूँ। अब तोड़ तो पत्थर रहा था लेकिन उसको तो वो नसीब ही दिखाई दे रहा था, यही काम करना है मुझे। फिर दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? काम तो वही कर रहा था, वही पत्थर ही तोड़ रहा था। तो दूसरे ने कहा क्या करो साहब, बस पेट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पेट के लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करूंगा तो शाम को कुछ पैसा मिलेगा तो रोटी मिलेगी, इसलिए पेट के लिए मेहनत कर रहा हूँ। फिर तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? काम तीनों का वही था, पर तीसरा कहता अरे मैं तो मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों को भगवान के दर्शन होंगे। मतलब बड़ा भक्त था तो उस हिसाब से उसने इतनी खुशी से इतने नशे से बात, कार्य वही था लेकिन वो खुशी और नशा दिखाया। अब काम वही है लेकिन एक व्यक्ति उसको इतने दुखी मन से कर रहा है, दूसरा ठीक है न्यूट्रल होके कर रहा है, तीसरा तो खुशी खुशी कर रहा है। तो हम कैसे करते हैं? दुखी होके करते हैं या ठीक है कर रहे हैं या खुशी खुशी, चाहे वो घर का काम हो, चाहे मधुबन में कर रहे हैं, मधुबन में भी है ना सेवा करते हैं, तो देखते दूसरी माताएं तो सोई है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो तो देखो आई नहीं आज सेवा पर और मैं ही सारा दिन लगी हूँ, ये देखो आया ही नहीं और मेरे को ही सारा काम करना पड़ा। तो उस सोच से करते हैं या खुशी खुशी करते कि वाह मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य बन रहा है। हाँ क्या सोच के करते हैं? सच्ची सोए कैसे रहेंगे? हाँ, तो इसीलिए परंतु कोई कोई ऐसे होता है ना, हाँ, देखो वो माता तो आती ही नहीं है, अभी मैं बोलूंगी उसकी शिकायत करूंगी मैं, हाँ, ये तो सेवा पर आती ही नहीं है, हाँ, जी लेकिन होता अंदर में होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वैसे जैसे ज्ञान के लिए कहते हैं ना जो ओटे सो अर्जुन, ज्ञान का जो मनन चिंतन करे उसका नशा चढ़ाए वो सच्चा अर्जुन, जो अर्जुन करे वो अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, अगर दशा चढ़ाना है तो क्या करना पड़ता है? अपनी घोट तो नशा चढ़े, जो खुद घोटता है ना और फिर लेता है तो नशा ज्यादा चढ़ता है। या तो फिर वो जैसे बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, तो तुलसीदास चंदन घिसने की मेहनत कर रहा है और रघुवीर उसको राजाई तिलक दे रहा है। तो हम मनन चिंतन करते हैं भगवान हमको विजय का तिलक देता है। तो अंदर में बाबा की याद है, तो कोई भी सेवा करते हम किसी आत्माओं को देखकर थोड़ी करते हैं, इनसे मुझे प्रशंसा मिलेगी तो मैं सेवा करूं, ये मेरी महिमा करेगा तो दिखावे के लिए सेवा या प्रशंसा के लिए सेवा या देखा देखी में सेवा कि हाँ मैं इनसे ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, मैं इनसे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, इस हिसाब से सेवा, ये सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं सेवा माना मेवा, वैसे कहते हैं करो सेवा तो मिले मेवा, पर वास्तव में सेवा ही मेवा है, ये और भी ऊंची सोच है, इनसे भी ऊंची सोच है, करो सेवा तो मिले मेवा, ये भी फल की इच्छा है, पर जो मेरी सेवा है वही मेवा है, वही प्रत्यक्ष फल है, वही मेरा भाग्य बना रहा है, वही मेरी प्राप्ति का आधार है, वही मेरे लिए मेरा सौभाग्य है। कईयों को तो सेवा मिलती नहीं, मुझे तो बाबा ने कितनी सेवा दी है, पल पल पर मेरा भाग्य बन रहा है। तो सेवा ही मेवा है, ये और भी ऊंची सोच है। हम कहते हैं मनुष्यों की, देखो सोच तीन प्रकार की होती है। जैसे कोई कहते भाई हम क्यों जी रहे हैं, कोई कहेगा खाने के लिए जी रहे हैं। भाई क्यों जी रहे हैं, ताकि हम खूब अच्छा अच्छा खाएं। और दूसरा है भाई खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, पर जीने के लिए खा रहे हैं। देखो कितना अंतर हो गया। कोई कहे कि खाने के लिए जी रहे हैं, और कोई कहे जीने के लिए खा रहे हैं, कितनी सोच में अंतर हो गया। कोई व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों के वश है तो अपने लिए जी रहा है, अपने कोई सुखी करने के लिए सोच रहा है, बस मैं सुखी रहूं, मैं सुखी रहूं, मुझे सब कुछ मिले, मुझे ही सब कुछ प्राप्त हो, तो बस अपने लिए ही सब कुछ। और दूसरा है क्या कहते हैं, जियो तो अपने लिए जियो, एक ऐसे लोग हैं। दूसरे कहते हैं कि जियो, तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और तीसरा है कि औरों के लिए जियो, अपने लिए जिए तो क्या बड़ी बात है, परंतु औरों के लिए जियो। नहीं, तीनों ही पॉजिटिव सोचना है ना, नेगेटिव क्यों सोचना। हाँ, चौथा है जो न खुद जीना चाहते न दूसरों को जीने देंगे। ऐसे कहते ना, एक एक बंदूक लाई, ठो मारा, खुद को भी ओम शांति, खुद को भी मार डालते हैं। तो न किसी को जीने देंगे, खुद तो जीना ही नहीं है, पर दूसरों को भी जीने नहीं देना है। तो अरे भाई, तुमको खुद को मारना था तो उनको मार के क्यों तुमने, तुम वैसे ही मार देते ना अपने आप को, उनको क्यों मारा। अगर तुम मर जाओगे तो वो जिंदा है या मर गए, आपको क्या फर्क पड़ेगा, अगर खुद को भी मारना ही है तो। तो इसीलिए कई प्रकार के लोग हैं, परंतु बाबा ने तो हमारी सोच को ही पूरा बदल दिया है। तो हर रूप से हमारी सोच बदल जाए। ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, ये इतना ऊंचा ज्ञान है, चाहे आत्मा का ज्ञान देखो, चाहे परमात्मा का ज्ञान, चाहे चक्र का ज्ञान। माता इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बीच में देखो ये टेढ़ी जा रही है लाइन आपकी, माता जो काला चश्मा वाली, अंदर जाओ, देखो जगह बीच में नहीं छोड़ो, सीधा सीधी लाइन बनाओ। माताओं को सीधी लाइन बनानी आती है, देखो भाई लोग कैसे सीधी लाइन में बैठे, माताएं नहीं बैठी, टेढ़ी टेढ़ी जा रही है, सीधी लाइन देखो, बीच में जगह नहीं छोड़ो, हाँ अंदर जाओ। तो इसीलिए ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, ये कितना ऊंचा ज्ञान है, चाहे आत्मा का ज्ञान, चाहे परमात्मा का ज्ञान, चाहे कर्मों का ज्ञान, चाहे चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान, चाहे जो भी बाबा हमें सुनाते हैं, ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। और जितना इस ज्ञान का रमण करते रहते हैं, उतनी हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती है। जितना हम पर चिंतन में लगे रहते हैं, उतनी हमारी बुद्धि भारी बनती जाएगी। तो ये ज्ञान का मनन चिंतन जैसे मंथन कर रहे हैं, मक्खन निकाल रहे हैं, शक्ति भरती जाएगी। ये सारा पॉजिटिव ज्ञान है। जो पहले देह को देखने की आदत थी, अब बाबा कहते हैं आत्मा को देखो। आप सोच सकते हो ब्रह्मा बाबा ने अपने ऊपर कितनी मेहनत की होगी। जब शिव बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया और ब्रह्मा बाबा से जो कुछ भी करवाया, तो ब्रह्मा बाबा ने इतना सहज रूप से कैसे किया, सॉरी कि ऐसा ही कोई छू मंतर हो गया। इतना बड़ा धंधा बाबा का, इतना बड़ा परिवार, इतना लोक लाज, इतनी सारा सामाजिक कार्य, जो कुछ भी बाबा करते थे, एक धक से कैसे छूटा। ऐसे थोड़ी कि जादू मंत्र हुआ, नहीं नहीं, बाबा ने अपने पर मेहनत की। बाबा ने कैसे वो मेहनत अपने ऊपर किस प्रकार से की है ना, कई बार दादी मनोर इंद्रा बहुत सुंदर सुनाती थी कि बाबा ने अपनी दृष्टि को कैसे बदली किया। पहले बाबा की युगल थी, बाबा के बच्चे थे, बाबा की बहू थी। बाबा की बहू जो थी वो बाबा का उसमें इतना मोह था, ब्रजिंद्रा दादी बाबा की लौकिक में बहू थी जो महाराष्ट्र जोन की इंचार्ज थी ब्रजिंद्रा दादी, तो बाबा का उसमें बहुत मोह था। बेटी से भी ज्यादा प्यार बाबा बहू से करता था। बेटी तो निर्मल शांता दादी और दूसरी दो तो शादी करके गए थे, पर बहू तो साथ में रहती थी ना। तो कैसे बाबा ने अपने अपने अंदर उनके प्रति जो दृष्टि थी, मैं इसका ससुर हूँ, हाँ मैं इसका मैं जिम्मेदार हूँ, मेरी ये पत्नी है, कैसे बाबा ने दृष्टि बदली कर दी। बाबा दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है, बाबा की लौकिक युगल का नाम यशोदा था, यशोदा आत्मा है। बहू का नाम राधिका था, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो बाबा ने अपनी दृष्टि बदली की। नहीं तो इतना सह स्टोरी है। किसी ने मेरे से प्रश्न किया, मैं ये जब पॉइंट सुना रही थी तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि बाबा को ज्यादा मेहनत लगी यशोदा को आत्मा देखने में, या यशोदा को ज्यादा मेहनत लगी बाबा को पिता देखने में। क्योंकि पति था और पति प्रजा पिता बन गया, सबका पिता बन गया, उसका भी पिता बन गया ना, पत्नी थी ना, और बाबा को उसने पिता रूप में देखा और बाबा ने पत्नी को बेटी रूप में देखा। देखो दृष्टि कैसे बदल गई। पर पहले तो बाबा ने अपने ऊपर कितना अभ्यास किया होगा, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी, बाबा को यशोदा को आत्मा देखने में ज्यादा मेहनत लगी होगी, या यशोदा को बाबा को आत्मा देखने में मेहनत लगी होगी, या पिता देखने में मेहनत लगी होगी, किसको ज्यादा मेहनत लगी होगी? यशोदा को। अब ये तो मैं नहीं जानती हूँ, वो तो बाबा जाने। जी मम्मा की लौकिक में माँ थी तो रोचा उसका नाम था, तो मम्मा को उनको बेटी देखने में मेहनत लगी ज्यादा, या माँ को उनको बेटी माँ मतलब माँ को मम्मा को माँ समझने में ज्यादा मेहनत लगी, या मम्मा को उनको बेटी समझने में ज्यादा मेहनत लगी होगी? मेहनत ज्यादा किसको लगी होगी? दोनों साथ में यज्ञ में रहते थे, मम्मा की माँ को ज्यादा मेहनत लगी होगी मम्मा अपनी बेटी को माँ समझने में, आप सोचो। परंतु ये सब जब हम अपने बुद्धि में परिवर्तन कर लेते ना तो फिर सहज हो जाता। हाँ किसको ज्यादा मेहनत लगती है, किसको कम मेहनत लगती है, लेकिन उसका आधार है मन के विचारों का परिवर्तन करना। उसमें किसको ज्यादा मेहनत लगती है, किसको तो सहज लगता है। अब जैसे ही बाबा के बने, बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया, सबको आत्मा रूप में देख रहे, ये मेरा फलाना है, ये फलाना है, फलाना ये देखने, दृष्टि बदल जाए। लेकिन दृष्टि बदलने में मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि ये देह अभिमान को तोड़ना भी तो पड़ता है ना, स्त्री भान को भी तोड़ना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने देखो यज्ञ के अंदर ये सब बहनों को वो शॉर्ट्स पहनाए, बाबा ने उनके लिए शॉर्ट्स बनाए, वो नहीं शॉर्ट पहनते हैं, क्या बोलते हैं, निक्कर, निक्कर, वो जो पैंट पड़ी है ना उनको सामने देखो बहनों को, वो निक्कर है, निक्कर कहते हैं वो आधी। और वो और जाते थे ये लोग ये क्या कहते हैं एक्सरसाइज करने, और सागर के किनारे जाते थे, देखो सब वहाँ निक्कर पहन के है सब बहने। तो हाँ ये निक्कर है देखो, बिल्कुल यही हाफ पैंट्स जिसको कहते हैं, हाफ पैंट्स बाबा ने बनवाए थे। तो ये जो स्त्रीपन का भान, कुमारीपन का भान, ये जैसे निकल गया शुरू में, और फिर इनके अंदर एक नई शक्ति आई। इन्होंने आप देखा होगा, इन्होंने बाल नहीं बनाया, बाबा ने इन्होंने क्या कहा, मम्मा ने भी कहा, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक हम चोटी नहीं करेंगे। मालूम है आप लोगों को, सबके बाल खुले हैं, देख रहे हैं, किसी की भी चोटी नहीं है, सबके बाल खुले हैं। तो वो किसका, बाबा ने एक बार मिसाल दिया था, वो द्रौपदी के लिए बताते ना कि द्रौपदी ने कहा कि जब तक हमको स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक हम बाल नहीं बनाएंगे, और वो दुशासन ने जब उसका चीर हरण किया तभी तो बालों से पकड़ा, वो दिखाते उसके बाल खुले थे। तो इन्होंने भी कहा जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक हम चोटी नहीं करेंगे। ऐसे शुरू में तो नशा चढ़ाते थे बाबा बहुत, और जब वो नशा चढ़ जाता था तो फिर वो जो और स्थूल नशे थे, ये माँ है मेरी, ये बेटी है, ये मेरा बाप है, ये मेरी सास है, ये मेरा ससुर है, पहले तो घूंघट निकालते होंगे, अब बाबा की बहू भी तो बाबा के आगे घूंघट निकालती थी, ये दादी ब्रिजेंद्रा अपना अनुभव सुनाती थी, दादी से हम पूछते थे, हम दादी के पास जाते थे साइंस सेंटर बॉम्बे में, दादी ब्रिजेंद्रा रहती थी, तो दादी से पूछते थे कि दादी पहले आप जब भी बाबा के आगे थे तो आप तो बहू थी, तो बाबा के आगे आप कैसे जाती थी? दादी कहती मैं घूंघट निकालती थी, क्योंकि बाबा जैसे आए घूंघट निकालेगी, बहू सास के आगे तो घूंघट ही निकालेगी। लेकिन फिर जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा को मैंने देखा तो बस मुझे तो श्री नारायण ही दिखाई दिया, तो काहे का घूंघट, काहे का ये सब कुछ छूट गया। तो और बाबा भी बिल्कुल बड़े दिल से आत्मा आत्मा भाई भाई को ही देखने का यही बाबा ने सबको सिखाया। तो देखो शुरू शुरू में कैसे बाबा ने इतना ऊंचा ज्ञान दे करके बुद्धि को ही बदल दिया। तो ये ज्ञान क्या है? बाबा कई बार कहते जो ज्ञान बाबा हमें देते हैं ये बीज है, बीज ये सार है, सारा निचोड़ रचयिता रचना का ज्ञान बीज के रूप में, सारे झाड़ का सार बीज में होता है। तो इसीलिए इतना बाबा ने हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया जो प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब मन में कोई अगर प्रश्न आते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं या तो समझा ही नहीं अभी तक ज्ञान, या तो मनन चिंतन करना नहीं आता है। दो कारणों से अभी तक प्रश्न मन में उठते होंगे, या तो ज्ञान पूरा समझा नहीं है या तो मनन चिंतन करना नहीं आता। चलो निश्चय है भी, परंतु निश्चय है कि भाई ये भगवान हमें पढ़ा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान की गहराई में भी जा सको, पूरा समझ सको, मुरली का पूरा अध्ययन हो, मुरली के एक एक पॉइंट में इतना सार भरा हुआ है, इतने राज भरे हुए, जो एक वाक्य का को आप पढ़ो और उसका चिंतन करो तो कितने राज निकल आएंगे एक वाक्य के अंदर ही। सागर की तरह है बाबा की ये मुरली। इसीलिए मम्मा कितनी बार एक ही मुरली पढ़ती थी, हम भी अनुभव करते हैं, सवेरे हमको मुरली सुनानी होती है या रोज भी कम से कम चार बार मैं मुरली पढ़ती हूँ, चार बार। पहले शाम को पढ़ूंगी, फिर रात को पढ़ूंगी, फिर सुबह पढ़ूंगी, हाँ फिर सवेरे अमृत वेले से पहले थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर अमृत, फिर योग के बाद फिर पढ़ेंगे, फिर तैयार होके क्लास में आएंगे। मानो हम देखते हैं कि जितनी बार वो मुरली पढ़ते उतनी बार नई बातें अनुभव होती है। ये एक वंडर है, सचमुच वंडर लगता है। और उसका पूरा टाइम सुबह के समय विचार सागर मंथन ही चलता और कुछ भी बात बुद्धि में नहीं रहती है। तो ये बहुत जरूरी है, अगर बुद्धि को हमें शुद्ध रखना है, साफ रखना है, अपना मनन चिंतन को श्रेष्ठ करना है, इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि उस समय बुद्धि फ्रेश होती है और कुछ भी बात बुद्धि में नहीं आई। अमृत वेले योग के बाद कोई सोते हैं क्या? कौन सोते हैं? माताएं सोती है, भाई सोते हैं कि नहीं? फिर भी कोई तो सोते होंगे। हाँ हमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अमृत वेले योग के बाद जाके सो जाए, वो समय तो बिल्कुल फ्रेश होने का, जल्दी तैयार होके। आप लोग तो सवेरे भी मुरली सुनते हो, फिर क्लास में भी आते होंगे या सेवा में होते होंगे तो वहाँ मुरली सुनते होंगे, लेकिन सुबह का टाइम बिल्कुल फ्रेश रहना चाहिए। हाँ दिन में भी दो घंटा तो मिलता होगा रेस्ट करने का, कुछ समय तो मिलता है ना कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। और रात को भी बस 10 बजे चले जाएंगे तो फिर जाकर के सोना ही है। दस बजे जाके सो जाते हैं या बातें करते रहते हैं? रात को बातें करते रहते हैं क्या? दूसरों को डिस्टर्ब करते होंगे अगर रात को बातें करते रहते हैं। हमको किसी ने कहा कि हमारे कमरे में एक माता है, वो पता नहीं रेडियो लेकर के सुनती रहती है, रात के 12 बजे तक सुनती रहती। क्यों सुनते रहते हैं? जरूरत क्या है? जल्दी सो जाओ ना, फिर बुढ़ली के समय झुटके खाते हैं, फायदा क्या? रात को देर तक क्यों जागने का? जल्दी सो जाओ। उस दिन मैं क्लास में सुना रही थी ना, मुरली के मना एक सुना रही थी कि बाबा ने कहा कि रात को उठो, तो किसी ने कहा उस दिन मुरली में चला होगा, तो उसने कहा मैं सारी रात जागूंगा। लेकिन बड़ी दादी उस समय थी, तो उसने कहा कि मैं सारी रात यहाँ बाबा के कमरे में जागूंगा, मुझे आज सारी रात तपस्या करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा रात को जागो। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो रात को पूरी रात तो हम नहीं रखते, यहाँ कोई विशेष मौका होता है तो करते हैं। सारी रात भट्टी चलती है सभी के लिए, ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति अकेले बैठ के भट्टी करे और बाबा का कमरा उसके लिए खुला रखे, ये तो बंद रखते हैं ना। यहाँ बैठा है, कितने बजे बंद करते हैं? 11 बजे बंद करते, फिर कितने बजे खोलते हैं जी? हाँ, 2 बजे के बाद। तो 11 से 2 बजे तक बाबा का कमरा भी बंद रखते हैं। कई कहते हैं क्यों बाबा का कमरा बंद रखते हैं, सही रात कोई बैठना चाहे, पर दादी जी ने मना किया कि नहीं, अगर कोई प्रोग्राम हो तो भले हॉल में योग करो, परंतु बाबा का कमरा नहीं। तो वो भाई तो इतना जिद्दी था, बात मत पूछो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो योग करूंगा, मैं तो करूंगा। तो मैंने तो उसको बहुत मना किया, फिर मैं दादी के पास लेकर के गई उसको। मैंने कहा दादी जी ये देखो, ये कहता है मैं तो सारी रात, कहता है अगर आप कमरा बंद भी करेंगे ना, मैं बाहर बैठ करके करूंगा। और इतनी ठंडी थी, हमने कहा तुमको मरना है क्या, बाहर बैठ कर कैसे करोगे? कहता है नहीं मैं करूंगा। लेकिन फिर मैंने कहा भाई ये तो बड़ा जिद्दी भाई है, विदेशी था, भारत का नहीं था, विदेशी था। तो मैं उनको दादी के पास लेकर के गई, तो दादी ने तो उसको इतना प्यार से समझा, किस बात से वो संतुष्ट हुआ? तो मैंने क्लास में बताया था कि दादी ने उनको कहा देखो ना, ये 11 से 2 बजे का टाइम है, तमोगुणी टाइम, लोग विकारी बनते हैं उस समय पर, तो वो भोगियों का टाइम है। योगियों का टाइम तो 3 बजे से है, तो जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं। तो इसीलिए जब भोगी भोग विलास में है तो योगियों को के सोने का समय, क्योंकि वो समय तमोगुणी है। बस ये जब उसको दादी ने कहा ना, तब उसकी आंखें खुली, तब वो मान गया, सचमुच मान गया, पर दादी का माना, मेरा नहीं माना उसने। पर ये जो पॉइंट दादी ने उसको दी ना, ये उसको अपील कर गई। मुझे उस समय वो बुद्धि में पॉइंट ऐसी नहीं आई, हमने तो इतने कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारा लॉ नहीं है, कानून नहीं है, थोड़ा मैं पूरा स्ट्रिक्ट हो गई। तो कहता ठीक है, अब मैं बाहर बैठ जाऊंगा। तो मैंने कहा ये तो बीमार हो जाएगा, इतनी ठंडी में ऐसे बाहर बैठेगा। तो फिर दादी के पास ले गए, तो दादी ने जिस रूप से उसको इतना प्यार से समझाया ना, तो इस हिसाब से वो मान गया। तब हमने भी सोचा कि देखो इन लोगों के साथ जिद नहीं कर सकते, पर उनको उनका उनको वास्तविकता बताओ तो जरूर क्यों नहीं मानेंगे। तो दादी ने भी ये हमारा ये नियम जरूर बनाया है, परंतु ये जरूर है कि साकार बाबा के समय तो नियम होता था बाबा के पास किस समय जाना, ऐसे नहीं कि जब चाहो चले जाओ। तो ऑर्डर्स होते थे बाहर, वो लच्छू दादी खड़ी होती थी बाबा के साथ, ऐसे जैसे दादियों के सामने हम देखते ऐसे नहीं जा सकते, तो बाबा के आगे भी ऐसे होता था। लेकिन बाबा को जैसे पता चलता था, नहीं बच्ची आने दो आने दो आने दो, दादियां वैसे आने दो आने दो, बेचारी वो ब्राह्मणी तो ऐसे ही बैठ जाती क्योंकि दादी कहती आने दो आने दो। खैर, परंतु बाबा ने हमें जरूर ये बताया कि कैसे ये अमृत वेले के समय ये विचार सागर मंथन करने का बहुत सुंदर तरीका है। दादी जानकी अपना अनुभव सुनाती है कि एक बार दादी बाबा के कमरे में गई थी, 3 बजे का समय था और बाबा बैठे थे, खटिया पर ही बैठे थे, और बिल्कुल तो बाबा के पास गई, कहा बाबा, वैसे बाबा के सामने खड़ी हो गई, तो बाबा ने उनको देखा तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची आपको पता है बाबा क्या कर रहे थे? अब उसको क्या मालूम क्या कर रहे थे, बैठे हैं। बाबा क्या कर रहे थे? बाबा बच्चों के लिए गरम गरम हलवा पका रहे थे। तो बताओ कौन सा हलवा पका रहे थे पलंग पर बैठ करके? जी हाँ, विचार सागर मंथन कर रहे थे ब्रह्मा बाबा। फिर दादी से पूछा बाबा ने, बच्ची बताओ शिव बाबा विचार सागर मंथन करता है? तो दादी ने कहा, शिव बाबा क्यों विचार सागर मंथन करेगा, ब्रह्मा बाबा करेगा। कहा ठीक कहा। तो शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की जरूरत ही नहीं ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई और वाणी चली। पर ब्रह्मा बाबा को विचार सागर मंथन करना पड़ता, इसलिए गरम गरम हलवा पका रहे। तो ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है, जो मुरली से निकालते हैं समझते हैं, ये सारा बीज है। फिर उसके बाद जो योग लगाते हैं, तो योग क्या है? ज्ञान है बीज, तो योग को क्या कहेंगे? योग को क्या कहेंगे? फल। योग को क्या कहेंगे? योग जिसको बाबा कहते ना, जैसे बीज को सींचते हैं ना, तो सींचने से क्या होता है? फल नहीं, जब सींचते हैं तो जो बीज के अंदर जो शक्ति है, जो अंकुर निकलता है, माना जो सोई हुई शक्ति है वो जागती है। अंतर में जो अंकुर जैसे होगा वो निकलता है ना। बीज को नहीं पानी में रखते हैं तो क्या होता है, गीले कपड़े में रखो तो क्या होता है, धीरे धीरे उसका सल्ला निकलता है। तो ये सल्ला क्या है, मानो वो जो बीज के अंदर की शक्ति है वो जागृत होती है, वो बाहर आती है। तो योग क्या है? ज्ञान रूपी बीज को सींचना। जो हम बाबा की मुरली में पॉइंट आते, बच्चे तुम कौन हो, तुम क्या हो, अब उसका नशा चढ़ाना अपने अंदर, ये है जैसे अपनी अंतर में जो शक्ति सोई हुई है उसको प्रकट करना, उसको अनुभव करना, अंतर ही अंतर में अनुभव करना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं है। तो उसका मनन चिंतन जैसे करते हैं, ये योग हो जाता है, तो उसकी शक्ति का अनुभव होता है। तो योग क्या हो गया? ज्ञान रूपी बीज को सींचना, जिससे शक्ति का विकास होता है। दो मिनट। फिर तीसरा क्या है? धारणा। तो धारणा क्या है? धारणा क्या है? जैसे बीज से पेड़ निकलता है तो उसके बाद फूल लगते हैं, फूल। तो धारणा क्या है? वो फूल की तरह है। जो हम अपने जीवन में गुणों की अनुभूति करते हैं वो फूल है। फूल में सुगंध है, रस है, रंग है। तो ये सब गुणों के अलग अलग रूप, रंग, गंध, रस है जो हम अनुभव करते हैं, एक एक गुण। और फिर उस फूल से फल निकलता है, फूल में से ही फल निकलता है ना। तो फल क्या हो गया? सेवा। तो सेवा है फल, फूल है हमारी धारणा, ज्ञान है बीज, और योग है उसको सींचना, और धारणा है फूल, और फल और सेवा है फल। इसलिए सेवा ही मेवा है। अब ये समझो तो कितने कितना मेवा खाते रहते हो आप? माता ही भाई बताओ, सारा दिन मेवा खाते रहते हो या सेवा करते रहते हो? क्या करते हो? तो कितने शक्तिशाली बन गए होंगे। तो ये अनुभव सदा अपने साथ करते रहना, तो खुशी की खुराक भी खाते रहेंगे। चलो ओम शांति। देखो कि
सेकंड आया भाई, सेकंड नंबर, सीनियर सीनियर सिटीजन में मेडल आया उनको, शालवा
मेडल तो सबको मिला सीनियर।
हाँ, शालवा भी मिली।
हाँ,
ओम शांति। बाबा ऐसा करे, शिव बाबा आया है लेकर रजतनव में, भारत देश में सेव बब आया है लेख रज तनव में भारत देश में नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने शिव बब आया है लेख रज तनव में भारत देश में राजस्थान माउंट में पांडव भवन में राजस्थान माउंट में पांडव भवन में हिस्टरी हाल में गीता ज्ञान सुनाती है राजयोग सिखाती है गीता ज्ञान सुनाती है राजयोग सिखाती है शिव बब आया है लेख रज तनव में भारत देश में नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने ओम शांति भवन में शिव बाबा ब्रह्म बाबा मिलकर गुलजारी दादी तनव में सुख शांति पवित्रता का मुरली सुनाती है दैव गुण शक्तिया वरदान सुखाती है शिव बाबा आया है ब्रह्म बाबा तनव में भारत देश में शांति स्थापन करने शांतिवन स्थापन करे शांति स्थापन करने शांतिवन स्थापन करे शिव बाबा ब्रह्म बाबा दोनों मिलकर गुलजारी दारी तनव में डायमंड हाल में सुख शांति पवित्रता का मुरली सुनाती है दैव गुण शक्तिया वरदान से सिखाती है शिव बाबा आया है ब्रह्म बाबा तनव में भारत देश में नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने अनेक धर्म मत विनाश करके एक मत स्थापन करने अनेक धर्म मत विनाश करके एक धर्म मत स्थापन करने वसुदेव दैव कुटुंब स्थापन करने सत्ययुग लक्ष्मी नारायण राज्य स्थापन करते हैं शिव बाबा आया है ब्रह्म बाबा तनव में भारत देश में नरक दुनिया को स्वर्ग बनाने नरक दुनिया को ओम शांति हम मई 3 माह से सेवा करी सब्जी में अब सोमवार हम घर जाते हैं फिर हमको दादी बुलाती है जुलाई जून 28-25 हो गया हमारे युगल में दोन आती है फिर